अथर्ववेदीय ब्राह्मण भाग की प्रश्न उपनिषद के षष्ठ प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण में आचार्य पिपलाद जी के पास आए हुए छह ऋषियों में से सुकेशा नाम के ऋषि षोडशकल पुरुष विषयक अपनी जिज्ञासा आचार्य पिपलाद जी के पास रखे हैं और उस षोडशकल पुरुष को जानने के लिए उन्होंने पूछा कि षोडशकल पुरुष कहां है। कहा कि षोडशकल पुरुष इसी शरीर में है, उसे जानने के लिए कहीं देशांतर में जाने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वभावतः बहिर्मुख इंद्रियां हैं ज्ञान की साधनभूता, उनका स्वभाव परिवर्तित करने की आवश्यकता है। परांचिखानी व्यत्रणी स्वयंभू तस्मात् परां पश्यति नांतरात्मन, इस श्रुति वचन के अनुसार परमात्मा ने इंद्रियों को स्वभावतः जगत के अभिमुख बनाया है, इसलिए पराक कहते हैं जगत को, बाह्य पदार्थों को। तो बाह्य पदार्थ का ही ज्ञान, ज्ञान की साधन भूत इंद्रिया जीवात्मा को कराती रहती है। इंद्रिया जो ज्ञान की साधन है वह जिसको दिखाएगी वही देखेगा जीव दृष्टा, और वे अपने स्वभाव के अनुसार अनात्मा को दिखाती है, अनात्मा को ही देखता है। षोडशकल पुरुष है आत्मा, उसे देखना है तो ज्ञान की साधनभूत इंद्रियों को उनके स्वभाव से निगृहित करना पड़ेगा, अंतर्मुख करना पड़ेगा। इसलिए जब तक इंद्रिया बहिर्मुख हैं, अदांत हैं, मन अशांत है, तब तक षोडशकल पुरुष का अनुभव नहीं होता। इसलिए षोडशकल पुरुष के प्रतिपादक वेदांत विचार के अधिकारी के लक्षण के रूप में समाधि षट संपत्ति को रखा है ना, चार साधनों में नित्यानित्य वस्तु विवेक, वैराग्य और समाधि षट संपत्ति। उसमें शम है मनोनिग्रह, दम है बाह्य इंद्रियों का निग्रह। तो उस मंत्र के उत्तरार्ध में इसलिए श्रुति कहती है कश्चित धीर, इसमें धीर शब्द से और कश्चित शब्द से बताया गया कि वेदांत विचार अधिकारी बड़ा दुर्लभ है। वेदांत विचार का अधिकारी है साधन चतुष्टय संपन्न, और साधन चतुष्टय में पहला साधन है नित्यानित्य वस्तु विवेक। सहसा नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं होता। नचिकेता को यमराज जी कहते हैं साधक अवस्था में मुझे भी नित्यानित्य वस्तु विवेक नहीं था। नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहते तुम्हारी साधक अवस्था के साथ मैं अपने साधक अवस्था की तुलना करता हूं, देखता हूं तो दूर दूर तक तुम्हारी तुलना में अपने आप को बहुत कमी देखता हूं। तुम्हारे पास नित्यानित्य वस्तु विवेक है, मैंने आत्मज्ञान के बदले में पूरा संसार तुम्हें प्रदान करने के लिए प्रस्तुत किया और संसार को भोगने के लिए पूर्ण आयु यानी हिरण्यगर्भ की जो आयु होती है वो होती है पूरा, जब से संसार उत्पन्न हुआ तब से लेकर के संसार के महाप्रलय तक की, उसे पूर्ण आयु कहा जाता है। उसका भी प्रस्ताव रखा कि इतनी आयु लेकर के पूरे संसार के भोग तुम अकेले भोगो, लेकिन इसमें भी तुमने अनित्यता देखी और केवल एक आत्म वस्तु को ही नित्य के रूप में तुम साधक अवस्था में समझ रहे हो। इसलिए मुझे कहा तुमने कि यमराज जी, आपने जो मुझे आत्मज्ञान के बदले में देने के लिए प्रस्तावित किया हुआ संसार है वो आप अपने पास ही रखिए, तवैव वाह तव नृत्य गीत है, और मेरी स्थिति पूछो तो मैं नान्यम वरम नचिकेता वृणुते, जो अपने उद्धार के लिए आत्मज्ञान विषयक वर मांगा है इसे छोड़ करके दूसरा नहीं मांग सकता। ये निश्चय नित्यानित्य वस्तु विवेक कहलाता है और ये तुम्हारे अंदर देख करके यमराज जी कहते हैं अपनी साधक अवस्था में अपनी दृष्टि को ले जाता हूं तो देखता हूं कि मैं तुम्हारे दूर दूर तक भी तुलना में नहीं आ पाता, तो इसलिए ये है दुर्लभता, कश्चित शब्द से बताई गई कश्चित धीरा, और धीर शब्द से बताया गया है नित्यानित्य वस्तु विवेक, और ये नित्यानित्य वस्तु विवेक ठीक से हो जाए तो फिर अनित्य पदार्थ से वैराग्य हो ही जाता है, और अनित्य पदार्थ जो आहिक पारलौकिक भोग है इन्हीं की आंतरिक अभिलाषा इन भोग विषयक रागद्वेषी मन को चंचल करते हैं, इंद्रियों को अपने तरफ आकर्षित करते हैं, और जब इनमें अनित्यतादि दोष दर्शन होगा तो मन का स्वभाव है कि जिन पदार्थों में उसे दोष दिखता है उसे आप भेजना भी चाहोगे तो नहीं जाता, तभी तक आपको उन पदार्थों में मन बार बार ले जाता है जब तक उसे उन पदार्थों में दोष नहीं दिखते, गुण ही गुण दिखते हैं, तो उन पदार्थों के चिंतन में लगता है। जिस दिन उसे दोष दिखेगा उस दिन वहां से हटेगा, फिर जबरदस्ती कुछ क्षण के लिए भी आप कहोगे कि वहां पर जाओ तो नहीं जाएगा। तो अनित्यत्वादि दोष दर्शन से वैराग्य होगा, तो फिर इंद्रिया तथा मन ये दोनों भी अपना बहिर्मुख स्वभाव छोड़ करके आप जिस षोड़शकल पुरुष को जानना चाहते हैं उसके अनुकूल बन जाएंगे, अंतर्मुख हो जाएंगे। वो अंतर्मुखता बताई गई आवृत्त चक्षु शब्द से, धीरा शब्द से नित्यानित्य वस्तु विवेक बताया गया, और आवृत्त चक्षु से बताया गया एक प्रकार से इंद्रियों का तथा मन का निग्रह, समाधि साधन। और अमृतत्वम इच्छन, इससे मुमुक्षा बताई गई चौथा, जो अधिकारी का विशेषण होता है। कश्चित धीर प्रत्यगात्मानम ऐक्षत आवृत्त चक्षु अमृतत्वम इच्छन। तो तीव्र मुमुक्षा फलेच्छा, फिर साधन से विचलित नहीं होने देती। जब तक फल की प्राप्ति नहीं होती तब तक साधन में साधक को लगाए रखती है। तो यदि अमृतत्व यानी मोक्ष उसकी इच्छा दृढ़ रहेगी तो वेदांत विचार, वेदांतार्थ मनन निधिध्यासन से आपको वह आपकी मुमुक्षा दूर नहीं होने देगी। जब तक मुमुक्षा का विषयभूत समूल अध्यास की निवृत्ति रूप मोक्ष संपन्न नहीं होता तब तक आपकी मुमुक्षा आपको इस समूल अध्यास के निवर्तक आत्म साक्षात्कार के अंतरंग साधनों में लगाए रखेगी। ठीक से सोने भी नहीं देगी, थोड़ी आवश्यक निद्रा हुई वे जगो और प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्म तत्त्वम् सच्चित् सुखम् परमहंस गतिम् तुरीयम्, उसका चिंतन करो। ये वो अंदर की तीव्र मुमुक्षा बताएगी। आवश्यक निद्रा हुई तो उठो, सुबह सुबह जो है ध्यान करो निद्रा का, सुख त्याग करके। तो इस प्रकार ये आवृत्त चक्षु और अमृतत्व इच्छन और धीर, इन तीन विशेषणों ने अधिकारी को बताया। वो कहते हैं षोड़शकल पुरुष को जान सकता है। प्रत्येगात्मानम ऐक्षत, वो कहां पर है षोड़शकल पुरुष, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आचार्य पिपला जी ने बताया ना कि यह वह अंतः शरीर है, इसी शरीर के अंदर हृदय में है, अंतरात्मा के रूप में। उसे उस कठोपनिषद के मंत्र में प्रत्येगात्मा शब्द से कहा, जिसे यहां पर सुकेशा षोड़शकल पुरुष के रूप में जानना चाहते हैं, उसे अंतरात्मा शब्द से उस मंत्र में बताया गया है। प्रत्येगात्मानम ऐक्षत, ऐक्षत का अर्थ होता है जान लिया, जान लेता है। तो कश्चित यानी कोई कोई जान लेता है, इसलिए गीता में भी भगवान ने कहा ना कि यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम व्यक्ति तत्वता। तो प्रयत्न करने वाले साधकों में भी कोई कोई साधक साधना से निवर्त्य सारे दोषों से रहित चित्त होने पर उस प्रत्येक आत्मा को यानी षोड़शकल पुरुष को मैं के रूप में जान लेता है। प्रत्येक आत्मा न मैक्षत, इसके लिए जरूरी है उस मंत्र के उत्तरार्ध में बताया गया जो धीर शब्द से नित्यानित्य वस्तु विवेक, वह उपलक्षण है वैराग्य का भी। विवेक होगा तो वैराग्य भी होगा, विवेक वैराग्य। और आवृत्त चक्षु शब्द से बताए गए समाधि साधन, और अमृतत्वम इच्छन शब्द से बताई गई मुमुक्षा, ये है वेदांत विचार के अधिकारी के विशेषण। इन विशेषणों से संपन्न जो अधिकारी, वह प्रत्येगात्मानम ऐक्षत, षोड़शकल पुरुष को जान लेता है, प्रत्येगात्मा को जान लेता है कहो, या सुकेशा के जिज्ञास्य षोड़शकल पुरुष को जान लेता है ये कहो। वो षोड़श कलाएं, सोलह कलाएं बताई गई छठवें प्रश्न के उत्तर के अवसर पर चतुर्थ कंडिका में प्राणादि। ये प्राणादि सोलह कलाएं हैं, यानी उपाधि के तरह उपाधियां हैं। उस पुरुष की, और इन उपाधियों से विविक्त जो केवल चैतन्य मात्र है वो है प्रत्यगात्मा, उसका ज्ञान। इन कलाओं से युक्त पुरुष का ज्ञान तो सोपाधिक ज्ञान होगा, उससे अध्यास की निवृत्ति नहीं होगी। ये कलाएं जिसमें अध्यस्त है, अध्यारोप अपवादाभ्याम निष्प्रपंचम प्रपंचते बताया गया था ना, तो इसलिए कलाओं का अध्यारोप बताया गया और कलाओं का अधिष्ठान बताया गया आत्मा को, पुरुष को, और कलाएं हैं उसमें अध्यस्त, कलाएं हैं पुरुष का विवर्त कार्य, जैसे रस्सी का कार्य है सर्प और सर्प का अधिष्ठान है रस्सी, विवर्त उपादान कहो या अधिष्ठान कहो, ऐसे इन प्राणादि 16 कलाओं का विवर्त उपादान कारण पुरुष को बताया गया, स प्राणम असृजत इत्यादि से, अभिन्न निमित्त उपादान कारण है और कारण ही कार्य का वास्तविक स्वरूप हुआ करता है। तो इन कलाओं का वास्तविक स्वरूप, उनका जो विवर्त उपादान कारण है, अधिष्ठान है, वो है, भ्रांति से उससे अलग से दिख रही है। जैसे रस्सी के अज्ञान से कल्पित रस्सी का विवर्त कार्य सर्पादि का वास्तविक स्वरूप रस्सी है, ऐसे पुरुष के अज्ञान से आरोपित प्राणादि कलाएं, उनका वास्तविक स्वरूप पुरुष है और उस पुरुष का ही जब मैं के रूप में बोध होता है, तो ये अध्यारोपित जो कलाएं हैं इन कलाओं का भी पुरुष से अलग कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, ये निर्धारण होता है, ये बाधित हो जाती है। और कलाओं का अध्यास पुरुष में यानी आत्मा में सोपाधिक होने के कारण जब तक प्रारब्ध रूप उपाधि रहेगी तब तक ये बाधित होकर के प्रतीत होते हैं, जैसे विवेकी पुरुष को रेगिस्तान में सूर्य किरणों में जल दिखता है लेकिन वह अपने विवेक से समझता है ये प्रतीति मात्र है, वस्तुतः सूर्य किरणें ही सूर्य किरणें हैं। और अविवेकी जो मृग होता है उसे भी सूर्य किरणों में जल दिखता है लेकिन उसे वह समझ लेता है सत्य। जब पुरुष का आत्मरूप से बोध होगा और जिसको बोध हुआ उसका प्रारब्ध अवशिष्ट रहेगा तब तक वो प्रारब्ध रूपी उपाधि है अध्यास की, इसलिए सोपाधिक अध्यास माना गया, तब तक ये प्राणादि कलाएं उसकी बाधित रूप से प्रतीत उसे होगी ज्ञानी को। और प्राणादि कलाएं बाधित हो गई हैं, बाधित रूप से प्रतीत हो रही है जिसे, उसे कहा जाता है जीवन मुक्त, वो कलाएं उसे प्रभावित नहीं कर पाएगी। जैसे सूर्य किरणों में प्रतिभासमान जो जल विवेकी व्यक्ति प्यासा होने पर भी उसे पीने के लिए प्रभावित नहीं करता वो जल, क्योंकि बाधित है। और वही जल सूर्य किरणों में दिखने वाला मृग के लिए अबाधित होने से, सत्य होने से उसे दौड़ाता है, अपने ओर आकर्षित करना ये प्रभावित करना है। तो जगत जिसके लिए बाधित हो गया उसे जगत अपने ओर आकर्षित नहीं करेगा, यही बाधित होना है। और सत्य प्रतीत हो रहा है तो जगत का आकर्षण चित्त में रहेगा, जगत अपने ओर अबाधित रूप से जिसे दिख रहा है, सत्य जिसको दिख रहा है, कभी भी आकर्षित कर सकता है, जगत उस पर हावी हो सकता है। और ये षोड़श कलाएं बाधित हो गई है जिसकी, वह जीवन मुक्त उसे प्रतीत होगी लेकिन बाधित रूप से। कब तक प्रतीत होगी? जब तक प्रारब्ध होगा, और प्रारब्ध समाप्त होने के बाद विधेय मुक्ति को प्राप्त होगा। इसे बताया जा रहा है पंचम मंत्र में दृष्टांत के द्वारा। जब तक प्रारब्ध है तब तक जीवन मुक्ति दृष्ट फल ज्ञान का, और प्रारब्ध भोग करके समाप्त होने के बाद ज्ञान का अदृष्ट फल विधेय मुक्ति है। उसे छांदोग्य उपनिषद में छठवें अध्याय में बताया गया, तस्य तावद एव चिरम यावन्न विमोक्षे अथ संपत् से, एक वाक्य आता है उससे। इसका अर्थ है कि तस्य यानी ज्ञानिनः तावद एव चिरम, चिरम का अर्थ होता है विलंब, उतना ही विलंब है, देरी है। कितनी? तो कहते यावन्न विमोक्षे, जब तक प्रारब्ध का भोग करके शरीर पात नहीं होता तभी तक विलंब है। किसमें? विधेय मुक्ति में, अदृष्ट फल की प्राप्ति में, विधेय मुक्ति में ज्ञानी के कितना विलंब है? शरीर पात तक का। और शरीर पात कब होगा? शरीर पात यानी शरीर का छूटना, मृत्यु, वो कब होगी? जब प्रारब्ध का भोग करके क्षय होगा। तो प्रारब्ध का भोग करके क्षय होते ही ज्ञानी का शरीर छूट जाता है, और शरीर छूटा तो फिर ज्ञानी कहां चला जाएगा? न तस्य प्राणा उत्क्रामंती अत्रैव समवलीयन्ते, यहीं पर रहते रहते उसके सूक्ष्म शरीर अंतपाती जो 17 तत्व हैं प्राणादि, ये परमात्मा में विलीन होता है। अधिष्ठान में, अधिष्ठान से अनतिरिक्त निश्चित हो जाते हैं, वही परमात्मा ही पुरुष ही तो अधिष्ठान है। और जो भूत सूक्ष्म है उसका भी विलय हो जाता है उसके तब ज्ञान से, जिससे सूक्ष्म शरीर का विलय होता है उसी से भूत सूक्ष्म का भी लय होगा। और जब तक ये नहीं और ज्ञान होते ही कारण शरीर तो बाधित हो गया था, वो तो समाप्त हो गया था। बीच में सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इनका संयोग का हेतुभूत प्रारब्ध विद्यमान होने से ये भास रहे थे, वो चला गया, प्रारब्ध भोग करके समाप्त हुआ। तो ये सूक्ष्म शरीर और भूत सूक्ष्म भी अपने अपने पहले कारणों में, और वो कारण भी विलीन हो जाएगा परमात्मा में, और बचेगा जो स्थूल शरीर हम लोगों को दिखता है। ब्रह्मज्ञानी का स्थूल शरीर तो वैसा है, उसकी भी अंत्येष्टि करनी पड़ती है ना, वो तो एक प्रकार से सार तो निकल गया, ये जगत का ही अंश था। जो जगत अंतःपाती अन्नादि खा करके उसके मध्यम अंश से बना हुआ जितना भाग था वो इस शरीर के रूप में, मृत शरीर के रूप में पड़ा रहता है, उसी की अंत्येष्टि करनी पड़ती है। और जो मूल था वो तो परमात्मा में विलीन हो गया, और वो फिर परमात्म रूप ही होकर के रहता है, उसका कहीं फिर आना जाना नहीं, हमेशा हमेशा के लिए ब्रह्म रूप से अवस्थित होने का नाम है विधेय मुक्ति। फिर उसका कभी भी जन्म नहीं होगा। जिस शरीर में जन्म हुआ था, ज्ञान हुआ था, उस शरीर से हुए कर्म और उससे पहले के शरीर में किए गए जो कर्म संचित कर्म जिनका फलोपभोग नहीं हो पाया था उस ज्ञानी को, वे कर्म ज्ञानी के जन्मांतर के हेतु नहीं बनेंगे, क्योंकि अकेले कर्म से जन्म नहीं होता, उसके लिए इच्छा भी चाहिए। अविद्या, काम और कर्म, तो अविद्या कहते हैं अध्यास को, वो भी चाहिए। तो अध्यास और अध्यास के साथ कामनाएं, ये दोनों सहयोगी हो तो कर्म जन्मांतर के हेतु बनते हैं, नहीं तो नहीं। लेकिन वो कर्म होंगे क्या फिर? ब्रह्मज्ञानी का तो जन्म नहीं होगा। तो ब्रह्मज्ञानी के शरीर छूटने के पश्चात भी ब्रह्मज्ञानी की आराधना करने वाले, उनकी प्रशंसा करने वालों को श्रुति कहती है उनके संचित कर्मों में से उसकी आराधना सेवा के मात्रा में ईश्वर वो पुण्य कर्म देते रहते हैं ब्रह्मज्ञानी के हिस्से में से। तस्य दायम पुत्रा उपयन्ति सुहृद साधु कृत्याम द्विषंतः पाप कृत्याम, ये कहा जाता है। यदि गृहस्थ ब्रह्मज्ञानी है तो उसके औरस पुत्र वे उसके मानुष वित्त के अधिकारी बनेंगे, जो लौकिक वित्त होगा। दाय कहते हैं लौकिक धन को, लौकिक संपत्ति के तो वे अधिकारी। तस्य दायम पुत्रा उपयन्ति, उपयन्ति यानी प्राप्नुवन्ति। और जो सुहृद हैं यानी ब्रह्मज्ञानी के आराधक हैं, पूजक हैं, वे साधुकृत्याम, साधुकृत्य कहते हैं पुण्य कर्मों को। जो संचित कर्म है ब्रह्मज्ञानी का, ब्रह्मज्ञानी के द्वारा हुआ तो था लेकिन फलोपभोग ब्रह्मज्ञानी को नहीं हुआ जिन कर्मों का, उन कर्मों में से प्रशंसकों को ईश्वर साधुकृत्य ब्रह्मज्ञानी के प्रदान करते हैं। और सभी के सभी संसार के लोग ब्रह्मज्ञानी के प्रशंसक ही होते हैं, ऐसा नहीं होता, निंदक भी होते हैं। जो निंदक होंगे उनके लिए पाप कृत्याम। हाँ, पहले तो पहचानना मुश्किल है और फिर पहचान लेते हैं तो जो आराधक बनते हैं उनको तो पुण्य का भागी बनाते हैं ईश्वर, वो व्यवस्था करने वाले ईश्वर हैं। संतानों को तो यदि संस्कार हैं उनसे लाभ उठाने का अध्यात्म का, तो अध्यात्म से लाभ होगा उनके अध्यात्म निष्ठा से। और यदि नहीं है तो खाली अपना लौकिक धन जो उनका है उससे वे लौकिक भोग कर लेंगे, इतना मात्र उनके संबंध का लाभ उनको मिलेगा। हाँ, तो ब्रह्मज्ञानी जो है जिस कुल में जन्म लेते हैं उस कुल में कुलम पवित्रम जननी कृतार्थ कहा जाता है ना, लेकिन साथ में उस सामने वाले की उसकी निष्ठा भी होनी चाहिए कर्म के प्रति। हाँ, कर्म के प्रति शास्त्र विहित जो अनुष्ठेय साधन होता है उस अनुष्ठेय साधन के प्रति श्रद्धा की जरूरत है। और वो श्रद्धा यदि है तो लाभ मिलेगा, श्रद्धा नहीं है लाभ नहीं मिलेगा। हाँ, भावानुसार, इसलिए कहा जाता है शास्त्र, देवता, गुरु, इनमें जैसी श्रद्धा होती है ऐसे फल प्राप्त होता है। कुछ भी लगा लीजिए लेकिन भाव की प्रधानता है। हाँ, तो वो भी लगा ले लेकिन भाव की प्रधानता है। संचित कर्म भी दग्ध हुआ का मतलब ज्ञानी के लिए निर्बीज हुआ। जैसे चने भून लिए और उसको यदि खेत में बोएंगे तो अंकुरित नहीं होंगे, लेकिन भूख लगी है तो खाने के काम तो आएंगे ना, एक बार भूख शांत करेंगे। ऐसे जो ब्रह्मज्ञानी के प्रशंसक हैं, ब्रह्मज्ञानी के सेवक हैं, उनको ब्रह्मज्ञान की भूख है, उनकी भूख शांत करेंगे वे भुने हुए दग्ध हुए कर्म। बिल्कुल राख नहीं होते हैं। उनमें से जो बीज शक्ति है अंकुरित होने की वो नष्ट होती है, लेकिन खाने योग्य हो जाता है। और बिना भुने चने खाएंगे तो दांत गिरने की भी संभावना है, और भून करके खाते हैं तो दांत सुरक्षित रहते हैं, एक स्वाद भी आता है अलग से उसका। वो ब्रह्मज्ञानी के कर्म उनके सहायक बन जाते हैं। आगामी कर्म यानी क्रियमान कर्म वे भी इसी प्रकार से काम आते हैं। ईश्वर ब्रह्मज्ञानी के क्रियमान कर्म और संचित कर्म जाते हैं सरकारी खजाने में। सरकारी खजाना है ईश्वर के, और उसके व्यवस्थापक ईश्वर होते हैं, और वे सर्वज्ञ होने के नाते जानते हैं कौन ब्रह्मज्ञानी का प्रशंसक है, कौन ब्रह्मज्ञानी का निंदक है, तो उसके अनुसार उन कर्मों की व्यवस्था लगाते हैं। और ब्रह्मज्ञानी तो निर्विशेष ब्रह्म भाव में स्थित है। ये स्थिति हो जाती है, इसे बताया जा रहा है नदी के दृष्टांतों से पंचम कंडिका में। स यथा नद्यः शन्दमाना समुद्रायना समुद्रं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्यते तासां नामरूपे समुद्र इत्येवं प्रोच्यते एवं एव अस्य परिद्रष्टु इमा षोडशकला पुरुषायना पुरुषं प्राप्य अस्तं गच्छन्ति भिद्यते चासाम नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते स एषो अकलो अमृतो भवति तदेश श्लोक। इसमें नदी के दृष्टांत से आत्मज्ञान का फल अदृष्ट फल बताया जा रहा है, विदेह मुक्ति। दृष्ट फल जीवन मुक्ति होता है। तो दृष्टांत में कहते स शब्द का अर्थ है दृष्टांत। ब्रह्मज्ञानी निर्विशेष ब्रह्म भाव को प्राप्त करता है इन षोडश कलाओं से मुक्त होकर के, इसे समझाने के लिए यह दृष्टांत है। तो कहते यथा यानी जैसे इमा नद्य शन्दमाना, नदियों के दो विशेषण हैं, एक छंदमाना और समुद्रायणा। छंदमान कहते हैं बहती हुई बहने वाली, जो बह रही है नदियां प्रवाहित हो रही है, उनका ये जो प्रवाहित होना रूप प्रयत्न है वो किसके लिए है, अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। उनका अपना स्वरूप है समुद्र, नदी रूप धारण करने से पहले भी समुद्र थी। ग्रीष्म काल में सूर्य के किरणों से बाष्पीभूत समुद्र का जल, समुद्र यानी जल तत्व, वो बाष्प बन जाता है और हवा के माध्यम से उड़ जाता है आकाश में, और वहां फिर बादल का रूप धारण करता है और जहां कहीं बरसता है। और समुद्र तल से सबसे ऊंचा स्थान जो एवरेस्ट का शिखर है वहां जाकर के भी गिर जाए वो जल, लेकिन वहां उसे गौरव महसूस नहीं होता कि मैं तो समुद्र तो मेरे से बहुत नीचे है, मैं समुद्र से बहुत ऊंचे स्थान पर आ गया हूं, ऐसा उसे गौरव महसूस नहीं होता। गौरव महसूस होता तो उस चोटी छोड़ता ही नहीं, लेकिन जैसे ही गिरता है तो वहां से बहना शुरू कर देता है, रुकता ही नहीं वहां। और बहना उसका कब तक जारी रहता है? जब तक समुद्र में नहीं मिलता। समुद्र में मिलते ही फिर उसका बहना छूट जाता है। का मतलब जगत की हरेक वस्तु जो अपनी प्रकृति है, स्वरूप है, उसमें जब तक अवस्थित नहीं होता तब तक वह अशांत रहता है, उसे परम शांति की अनुभूति नहीं होती। कितने भी गौरवान्वित लोग अज्ञानी महसूस करते हैं जिन स्थानों पर पहुंच करके, उन स्थानों पर भी पहुंच जाए लेकिन अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रहे तो वहां पर भी वह अशांत ही होता है। ये इस से प्रतीत होता है। वो जल बिंदु वहां से बहते हुए किसी नाले में, किसी नाले से किसी नदी में, फिर वो नदी किसी दूसरी नदी में, फिर उस नदी दूसरी नदी से मुख्य नदी में जो सीधे जाकर के गंगा जी में मिलती है, उन सब में मिलता मिलता मिलता। और नदियों को देखेंगे तो गंगोत्री गए हैं ना, गौमुख भी गए हैं, गंगोत्री भी गए हैं, तो गौमुख में भी देखते हैं तो गुफा के अंदर से जल निकल रहा है वहां से। तो जैसा भी बीच में अवरोधक होगा वो जल अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए उसे हटाता है। इसलिए कभी कभी वहां गौमुख के पास खड़े रहो तो अंदर से बड़ी बड़ी जो बर्फ की शिलाएं हैं, ऊपर तो बर्फ ही बर्फ है, ग्लेशियर के नीचे से जल बहता हुआ आ रहा है, गिरती हैं तो बम फटे जैसे जो है आवाज आते हैं, घबराहट हो जाती है। और वो उस जल में बड़ी बड़ी शिलाएं बर्फ की बहते हुए आती है, गंगोत्री तक आती है, गंगोत्री से वहां जो एक गौरी कुंड है ना वहां तक गिरती है। और वहां से भी आगे चलते हैं तो कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं, थोड़ा उन पहाड़ों की तरफ देखो तो ऐसा लगेगा कि किसी जमाने में वे एक थे। तो जैसे लकड़ी को या आजकल इस मार्बल आदि को काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें होती है ना, उसमें लगा करके बड़ी बड़ी शिलाओं को भी काटते हैं लंबा, जितना के जितना लंबा। ऐसे वो गंगा जी ने उन पहाड़ों को समुद्र से मिलने के लिए अवरोध बन करके जो जो गंगा जी के सामने पहाड़ आया उसे टकराते हुए उसे चीर दिया अवरोधों को। और चीरते हुए एक पहाड़ दो पहाड़ नहीं, कितने सारे पहाड़ गंगा जी के बीच में आए, सबको ऋषिकेश हरिद्वार तक कितने सारे पहाड़ हैं, उनको चीरते हुए आती है और फिर हरिद्वार में आती है तो बिल्कुल ऐसी कई धाराओं में बढ़ जाती है। वहां से फिर अवरोध पहाड़ अवरोध नहीं आते गंगा जी को, फिर आगे बहती रहती है। लेकिन वहां पर भी कहीं बीच में हिमालय में जाते हैं तो कितने गंगोत्री तक पहुंचने में स्थान पड़ते हैं, आपके मन को आकर्षित करते कि नहीं करते हैं, लगता है कि नहीं कि मुंबई ही छोड़ करके यहीं रहा जाए। लेकिन गंगा जी रुकती तो पहाड़ों को भी लगता कि हमारा काम बन गया, लेकिन गंगा जी ने अपना उद्देश्य खोया नहीं, भूली नहीं कभी। उनका तो उद्देश्य है कि हमें अपने स्वरूप को पाना है, समुद्र को पाना है, नहीं तो हिमालय की सुंदरता हम लोगों के चित्तों को सहज आकर्षित कर लेती है। लेकिन गंगा जी वहां पर भी रमी नहीं, सारे यानी संसार के रागास्पद स्थानों को भी और द्वेषास्पद स्थानों को भी छोड़ते हुए, उनमें राग द्वेष से रहित होते हुए निकल जाती है। और जैसे ही गंगा सागर में पहुंचती है तो वहां फिर नाम और रूप को छोड़ देती है, और फिर वो गंगा जी रही कि नहीं, वहां गंगा जी नहीं रही। गंगा जी तो हैं लेकिन उनका परिच्छिन्न रूप, औपाधिक रूप जो परिच्छिन्न है, रूप का अर्थ है औपाधिक रूप, स्वरूप तो है रूप नहीं है। रूप कहते हैं उपाधि के कारण प्रतीत होने वाला परिच्छिन्न जल प्रवाह, वो रूप है, उसे तो छोड़ दिया और गंगा आदि नामों को छोड़ दिया, लेकिन जल तत्व रूप जो गंगा जी, वो जल कहीं नष्ट थोड़ा ही हुआ है, वो जल है मूल जल को जिस नाम से कहा जा रहा था वहां एवरेस्ट आदि पर गिरने से पहले, जल समुद्र इस नाम से ही कहा जा रहा था और अब भी समुद्र इस नाम से ही कहा जाता है, बीच में गंगा ये नाम आगंतुक था, नर्मदा ये नाम आगंतुक था, और उतने वो प्रवाह में बहने वाले जल का जो रूप था वो रूप भी आगंतुक है, जो आगंतुक है कृत्रिम है उसे छोड़ देती है, और जो स्वभाव है उस स्वभाव को प्राप्त करके जो उसके स्वरूप का नाम था, परिच्छिन्न स्वरूप धारण करने से पहले जो नाम था समुद्र, उसी नाम से फिर से वो कही जाती है। ये तो दृष्टांत है। तो शन्दमाना और बीच में एक विशेषण है समुद्रायणा, तो समुद्र है अयन, अयन कहते हैं गंतव्य को, अयगतो धातु से अयन शब्द बनता है, उसका अर्थ है गंतव्य, गंतव्य यानी प्राप्तव्य। तो नदियों का प्राप्तव्य क्या है, समुद्र, उनका वो स्वरूप है, वो उनका प्राप्तव्य है। तो समुद्र है प्राप्तव्य जिनका, ऐसी बहती हुई नदियां जैसे समुद्रम प्राप्य, समुद्र के पास जाती हैं तो अस्तंग गच्छन्ति, यहां अस्त होने का अर्थ समाप्त होना नहीं है, विनाश को प्राप्त करना नहीं है, अपितु अपने परिच्छिन्न रूप को छोड़ना है, परिच्छिन्न रूप को छोड़ना है। वो परिच्छिन्न रूप छूट गया, अस्तंगच्छन्ति का अर्थ, और विद्यते तासाम नाम रूपे, उनका नाम और रूप छूट जाता है, विद्यते का अर्थ, और समुद्र इत्येव इत्येवम प्रोच्यते, तो समुद्र इस नाम से ही वो कही जाती है। क्या जल्दी सुनना है। तो इस प्रकार ये दृष्टांत है नदियों का। तो नदियां अपने उपाधिभूत नाम रूप को छोड़ती हैं तो अपरिच्छिन्नता को प्राप्त करती है, अपरिच्छिन्न रूप से रहती है। ऐसे ही ये षोडश कलाएं जब तक आत्मा के साथ जुड़ी रहती हैं, इनसे अज्ञानवशात आत्मा का संबंध बना रहता है। इन षोडश कलाओं का स्वरूप अध्यास भी है और संसर्ग अध्यास भी है आत्मा के साथ, और आत्मा का केवल संसर्ग अध्यास है इन कलाओं के साथ। दो प्रकार का अध्यास होता है, एक स्वरूपाध्यास और एक संसर्ग अध्यास। संसर्ग अध्यास कहते हैं संबंध को, संबंध के अध्यास को, और जो जो जिसका जिसका अध्यास होगा ना उसे अध्यस्त कहते हैं। तो ये जो प्राणादि 16 कलाएं बताई हैं, 16 कलाएं कौन बता सकता है? है याद किसी को? एक एक नहीं, पूरी 16। तो ये जो पूरी 16 कलाएं हैं, ये पूरी 16 कलाएं, इनका स्वरूप भी अध्यस्त है और इनका आत्मा के साथ संबंध भी अध्यस्त है और आत्मा का स्वरूप अध्यस्त नहीं है। जो जो अध्यस्त होगा उसका बाध होता है, तो आत्मा के स्वरूप का बाध नहीं होता, केवल कलाओं के साथ आत्मा का जो संबंध है उसका मात्र बाध होता है और ये फिर असंग आत्मस्वरूप रहता। असंगो ही अयम पुरुष, अज्ञानवशात संबंध हुआ है। अध्यास का अर्थ ही होता है भ्रांति, वो अज्ञान से होती है। असंग होता हुआ भी कलाओं से युक्त प्रतीत होता है, कलाओं से संयुक्त प्रतीत होता है। तो ये जो कलाएं हैं, 16 कलाएं, इनका संबंध कब तक रहेगा? जब ज्ञान होगा तब तक तो, ज्ञान नहीं होता तब तक तो वास्तविक प्रतीत होता है संबंध। ज्ञान होते ही प्रारब्ध रहेगा, तब तक बाधित रहेगा इन 16 कलाओं के साथ आत्मा का संसर्ग। और जैसे ही ज्ञान होगा, क्या नाम, प्रारब्ध समाप्त होगा भोग करके और शरीर छूटेगा, तो जो जो भी बाधित था वो भी चला जाएगा, इसी परमात्मा में विलीन होगा और बचेगा केवल जो स्वरूप, वो समुद्र है। नाम रूप जैसे नदी के छूट गए और जल तत्व वो बचा, वो समुद्र है। नदियों में से सब कुछ छूट जाता है, अस्त को प्राप्त करता है, ऐसा नहीं, केवल उच्छेद होता है नाम रूप का नदी के। और जल तो रहता है ना, ऐसे जल स्थानीय है आत्मा का स्वरूप और नाम रूप स्थानीय है कलाएं, वो कलाएं छूट जाती हैं। आत्मा का संबंध कलाओं से छूट जाता है, कलाओं का स्वरूप भी छूट जाता है और बसता है केवल स्वरूप। वह स्वरूप पुरुष इस नाम से कहा जाता है, इसे यहां पर कह रहे हैं एवं एव अस्य परिदृष्टुहु। तो परिदृष्टुहु का अर्थ है ज्ञानी, 16 पुरुष का आत्मरूप से अनुभव जिसको हुआ है वह, और उसका क्या होता है? तो इमा 16 कलाहा पुरुषायना, इन 16 कलाओं का भी आयन यानी आश्रय अधिष्ठान कौन है? अध्यस्त का आयन होता है, वास्तविक स्वरूप होता है उनका अधिष्ठान। और ये पुरुषम प्राप्य अस्तं गच्छन्ति, जैसे नदियों का नाम रूप छूट जाता है ऐसे ये कलाएं छूट जाती हैं। और भिद्यते चासाम नाम रूपे, इन कलाओं का यह प्राण है और उसका कार्य जो स्पंदनात्मक है वो सब छूट जाता है नाम रूप। और पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, उस समय इन कलाओं का, कलाओं के परिचय से इसका परिचय नहीं रहेगा, अभी तो केवल स्वरूप जो है आत्मा चेतन, उपनिषदों में परमात्मा का ज्ञापन करने के लिए, परमात्मा को परिलक्षित करने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है उन्हीं शब्दों से विदेह कैवल्य को प्राप्त हुआ ब्रह्मज्ञानी कहा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मवेद ब्रह्म वो होती, वो तो ब्रह्म स्वरूप में ही अवस्थित हुआ, अलग किसी नाम से और अलग रूप से वह पूजनीय नहीं रहता, उसकी पूजा परमात्मा रूप से ही होती है, वो परमात्मा ही है। परमात्मा की पूजा ही उसकी पूजा है, क्योंकि परमात्मा से अलग नहीं है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम, ज्ञानी तो मेरा स्वरूप है। तो परमात्मा की पूजा में ही ज्ञानी की पूजा होती है, अलग उसकी पूजा नहीं है। तो भिद्यते चासाम नाम रूपे पुरुष इत्येवं प्रोच्यते, ये कहा गया। और अब वो जो कला के बिना पुरुष रहा वो कैसा है, इसे कहा जा रहा है कि स एषो अकल अमृतो भवति तदेश श्लोक। इससे इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।